الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج سورة الكهف کا ہم تھرڈ لیسن کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 سے 44 تک آج کی تفسیر دیکھیں گے. تھوڑا سا پیچھے سے دیکھتے ہیں ہم، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم اس کو بہت اچھے سے نہیں کر سکے تھے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 23 میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا، کہ ہرگز نہ تم کہنا کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو کل کروں گا. کل مینس مستقبل میں. اللہ ان شاء اللہ، مگر یہ کہو کہ ان شاء اللہ. تو ان شاء اللہ کہنا ضروری ہوتا ہے جب ہم فیوچر کی کوئی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، میں بارہا اس چیز کو بتا چکی ہوں مگر پھر بھی لوگ اس کے اندر احتیاط نہیں کرتے، کہ کبھی بھی دعا مانگتے وقت، چاہے کسی کے لیے مانگ رہے ہیں چاہے اپنے لیے مانگ رہے ہیں، کبھی بھی اس میں ان شاء اللہ نہیں کہنا. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی دے انشاءاللہ، اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ ہرگز نہیں کہنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یہ مت کہو کہ اگر وہ چاہے تو دے دے، کیونکہ وہ چاہے گا ہی تو دے گا نا. آپ کے کہنے سے تھوڑی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو برکت دے، اللہ نے چاہا تو آپ کا ایمان بڑھ جائے، اللہ نے چاہا تو آپ کو، بھائی اللہ چاہے گا تو دے گا نا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے حالات صحیح ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے برکت ہوگی، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ تو آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا. لیکن جس وقت آپ دعا مانگتے ہیں تو کسی کو دعا دیتے وقت پلیز انشاءاللہ نہیں کہا کریں. بہت دفعہ بتا چکی ہوں، پھر بھی قرآن کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں سمجھ آتی یہ بات، تو ساتھ ساتھ وہ انشاءاللہ لگاتے جاتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے آپ کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے، اور زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کام ہو جائے. انشاءاللہ نہیں کہتے تو بہت ممکن ہے کہ وہ کام ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انشاءاللہ برکت کے لیے بھی انسان کہتا ہے، اور یہ اس کے لیے بھی کہ وہ کام اللہ تعالیٰ ہمارا پورا فرما دے، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کام ہو یا نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بہترین دیکھنے والا، کتنا بہترین سننے والا. ابصر کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سب سے کامل ہے، اس کے دیکھنا جو ہے نا سب سے کامل ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں دیکھ سکتا. ابصر کے اندر نا، ویسے تو اللہ تعالیٰ بصیر اور سمیع اور بصیر بھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، لیکن اس میں ایک سمجھ لے ہائر ڈگری ہے پرفیکشن کی، کمال کی، یعنی مکمل جیسا وہ دیکھ سکتا ہے. اور اس میں تاکید ہے، بہت ایمفسس ہے اس طرح سے جب کہا جائے ابصر بھی واسمع، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح وہ باتوں کو سن سکتا ہے اور جس طرح وہ دیکھ سکتا ہے، اس طرح سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. پھر یہاں پہ ایک اور بات کہ یہ پچھلی آیت میں کہ جو آیت 24 تھی اس کا اینڈ دیکھیں، تو اللہ تعالی امید ہے کہ وہ رہنمائی کرے گا، میرا رب اس سے جو راشد ہے بھلائی میں اس سے زیادہ قریب. یعنی بعض دفعہ انسان اپنے لیے کوئی چیز بھلی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کی بھلائی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بھلائی اس کے اندر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بھلی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے. پھر دیکھیں यहाँ पे ये जो है ना, वला युशरिक फी हुक्मी ही अहादा, वो अपने हुक्म में अपने फैसले में किसी को शरीक नहीं करता। उसका फैसला वो भी है जो शरीयत उसने नाफिज किया, उसका फैसला ये भी है कि सूरज मशरक से निकले और मगरिब में गुरूब हो। आप नहीं कह सकते कि मगरिब से निकल के मशरक में क्यों नहीं जाता, ऐसे नहीं आप कह सकते, वो आपको पूछ के नहीं कोई करेगा। इसी तरह जिंदगी में हमारी बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो अल्लाह ताला के फैसले हैं, वो अपने फैसलों में किसी को शरीक नहीं करता कि किसी से पूछ के करे कि तुम बताओगे तो फिर मैं वैसा करूं, नाउज़ बिल्ला, ऐसा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी रहना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि अल्लाह ही है जो मेरे लिए कुछ बदल सकता है। वो कयामत के दिन अगर ये फैसला कर देगा कि कोई जहन्नुम में जाएगा तो उसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता, उसके फैसले में कोई शरीक नहीं, कोई उससे कुछ करा नहीं सकता, ठीक है? और शरीयत के भी जो उसके फैसले हैं उनमें कोई भी शरीक नहीं है। ये जो वो कहते हैं कि जी फलां पता नहीं वो भी अल्लाह से कह के कुछ करा लेगा, या फलां की भी पता नहीं इतनी पहुंच है कि वो अल्लाह से बदलवा लेगा फैसले या कुछ भी कर लेगा या हमारा काम बनवा देगा, अल्लाह ने नहीं बनाना लेकिन ये कहेगा तो बन जाएगा, ऐसा नहीं। वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, ठीक है? तो जब वो किसी को शरीक नहीं करता तो फिर डायरेक्ट उससे ही मांगे ना, फिर किसी और के पास जाने की क्या बात है। और इसी तरह जो भी कोई किसी कौम पे अजाब का फैसला आए, किसी कौम पे उरूज का आए, जवाल का आए, इसके अंदर सब में ये अल्लाह ही के फैसले हैं। वो अपने फैसलों में किसी को भी शामिल नहीं करता कि किसी किसी से पूछ पूछ के करे कि या किसी से इजाजत ले या किसी से मशवरा ले, नहीं। अल्लाह ताला के फैसलों पर एतराज करने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए। इस तरह मैंने आपको जैसे बताया शरीयत के मामले में भी किसी का हाथ काटना है ये सजा है, या किसी के पर जिना की रजम की सजा है, तो कोई कहे हाँ हम तो ये नहीं समझते कि सही है, अल्लाह माफ करे, तो फिर आप क्या, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि ये अल्लाह ही के फैसले हैं, तो अल्लाह के फैसलों पर आप एतराज करते हैं। और बाज लोग इतनी जुर्रत कर लेते हैं कि वो कहते हैं ये फैसले ही जालिमाना है, ये तो हुक्म ही जालिमाना है, या ये तो ऐसे है। याद रखें ये अल्लाह ही का हुक्म है, और फिर इंसान सोच ले कि किसको जालिमाना कह रहा है। तो आज की आयात देखते हैं कि अस्हाबे कहफ का हमने किस्सा पढ़ लिया और हमने उसके अंदर बहुत सारी विजडम की बातें देखी हैं कि इंसान के लिए इस वाक्य के अंदर कितना सबक है। इंसान को पता चलता है कि किस तरह इंसान अपना ईमान बचा सकता है, और ये भी कि हुस्ने जन रखना कितना जरूरी है कि अल्लाह ताला से अच्छा ही गुमान रखा जाए। और फिर अगर ऐसा वक्त आ जाए कि इंसान का ईमान खतरे में हो तो वो अपने ईमान को बचाए, ना कि बस अपनी लग्जरीज और अपनी दुनिया और इसके पीछे अपने ईमान को कुर्बान कर दे। क्या ये भी पता चला कि इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, स्टेप उठाना पड़ता है, मूवमेंट का हमें पता चलता है कि इंसान कुछ करे, ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, बस अल्लाह की कभी मदद आएगी कोई होगी तो हम बस हम क्या कर सकते। तो फतह का वादा उस वक्त है कि जब कोशिश की जाए, मेहनत की जाए, अपना तो पूरा जोर लगा लिया जाए, फिर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा जाए। इन असहाबे कहफ ने जो पनाह ली थी तो उन्होंने एक पूरा यानी अपनी तरफ से हर तरह से जो जो जिस हद तक वो कर सकते थे अपने आप को उस माहौल से निकाला और पनाह ले लिए गार में। उनकी जितनी भी इस्तात थी, जितनी भी ताकत थी, उसके मुताबिक उन्होंने मैक्सिमम कर लिया, तो अल्लाह ताला ने मदद अता फरमाई। फिर ये भी पता चलता है कि एक दूसरे से मशवरा भी लेना चाहिए, वो मशवरा भी करते हैं जब वो उसमें होते हैं गार में। फिर एक दूसरे की राय से अगर इख्तलाफ भी हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरी तरफ मुंह कर ले, एक दूसरी तरफ कर ले, बल्कि उसकी दूसरे की राय ठीक है, अपनी जगह है, मगर इंसान सबकी राय लेकर और फिर भी कोई एक फैसला दे सकता है। ये नहीं जरूरी है कि इंसान छोटी छोटी बातों को अना के मसले बना के और फिर दूसरे से नाराज हो जाए। और ये भी बहुत जरूरी है, पता चला कि जरूरी है इंसान ना कन्फ्रंटेशन में ही पड़े। इंसान को बाज हालात ऐसे होते हैं कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करना चाहिए, कि हम जरूरी नहीं किसी के साथ दू बदू कोई लड़ाई शुरू कर दे, कोई उसके साथ मतलब कोई ऐसी चीज शुरू कर दे जिससे एक मसला पैदा हो जाए। फिर हमें पता चलता है कि एक जमात जो हक पे होती है उसके साथ जुड़े रहने में इंसान की खैर है, अकेले अकेले रहने में इंसान गुम हो जाता है, फितनों में पड़ जाता है। लेकिन जब भी आपके लाइक माइंडेड लोग हों जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं, अब वो खैर का रास्ता है तो तब भी आपको साथियों की जरूरत होती है, शर का रास्ता है तो उसमें भी साथी चाहिए होते हैं, उसमें भी इंसान के साथी होते हैं जो उसको शर में उसके साथ खड़े होते हैं और शर में उसको तावन करते हैं। तो उस वक्त भी आप खैर के साथी अपने लिए ढूंढे और उनके साथ जुड़ जाएं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि हक जो होता है वो उसके लिए जरूरत नहीं है कि आपकी एज कितनी है, आपके पास नॉलेज कितना है या आपका स्टेटस कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक किसी एज में भी इंसान को मिल सकता है, किसी इल्म वाले को भी मिल सकता है, किसी स्टेटस के मालिक को भी मिल सकता है। और फिर ये आखिरी बात कहूंगी कि वहां कोई पैगंबर नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई इमाम नहीं था, कोई स्कॉलर नहीं था जो उनको गाइड करता। तो हमेशा आप इस इंतजार में ना बैठे रहा करें कि हमें कोई आके मोटिवेट ही करे तो हम उठेंगे। हाँ, हमें कोई मोटिवेशन देने वाला ही नहीं। अगर आप इसके इंतजार में बैठे रहे तो हो सकता है ऐसा टाइम आए कि कोई मोटिवेशन देने वाला ही ना हो, फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे सब कुछ। एक बात हमें और भी पता चलती है कि ये वो अपनी कौम के हमदर्द थे, उनके साथ उनको हमदर्दी थी कि अपनी कौम का चाहते थे, उनके साथ खैर ख्वाही रखने वाले थे, इसीलिए कौम ही उन्होंने कहा। तो कुफर से नफरत करें लेकिन काफिर से नफरत ना करें, क्योंकि अगर आपने उससे नफरत शुरू कर दी तो आप उसको कभी भी दावत ईमान नहीं दे सकेंगे। ये जरूरत नहीं होती कि हम हर वक्त यही सोचते रहें कि बस ये तबाही हो जाए, ये खत्म हो जाए। ये अगर तबाही करनी है तो जिस रब की वो नाफरमानी कर रहे हैं, जिसका कुफर कर रहे हैं, वो खुद ही उनको तबाह कर सकता है। तो आपको बद्दुआओं की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम खुद तो कोई काम कर नहीं सकते ना, खुद उठ के ना तो दावत तबलीग का काम करते हैं ना कुछ करते हैं, बस ले दे के हमारा जोर बद्दुआएं देने पे जरूर होता है, अल्लाह ये ऐसे हो जाए, इनको गारत कर दे फलां। तो हम कोई उस उठ के इसके ऊपर कोई दावत का काम करने के लिए भी खुद को तैयार करें, ठीक है? अच्छा, अब जब ये सारी बात यहाँ पे खत्म हो गई है, असहाबे कहफ का किस्सा मुकम्मल हो गया, आज हम आगे इससे पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें कैसे इंस्ट्रक्शन देता है कि हम क्या करें। देखिए, अब उनके पास एक कहफ था जिसमें जाके वो छुप गए, हम फितनों के दौर में क्या करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सूरत में आपको बहुत जबरदस्त इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपने क्या करना है, क्योंकि फितने में बहुत सारे लोग हर वक्त परेशान होते हैं, हम सभी परेशान हैं कि क्या करें, फितने इतने ज्यादा हैं, हम क्या करें। तो उसके अंदर आपको रहनुमाई देती है ये सूरा, क्योंकि हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में हमें गाइड करता है, तो क्या फितनों के दौर में गाइड नहीं किया होगा। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या गाइडेंस दी है, वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, आप तिलावत कीजिए जो वही किया गया आपकी तरफ, मिन किताबि रब्बिक, तेरे रब की किताब में से, आपके रब ने जो किताब नाजिल की है उसमें से जो आप पे वही किया गया है वो आप तिलावत कीजिए। सबसे पहले तिलावत का माना समझते हैं कि तिलावत किस चीज को कहते हैं। तिलावत सिर्फ ये जो जैसे हम पढ़ते हैं बगैर समझे हुए, इसको तिलावत नहीं कहते, तला यतलू तिलवन कहते हैं फॉलो करने को। और आप मीनिंग को फॉलो करते हैं इसमें, यानी आपको समझ आ रही होती है, आप उसको समझ समझ के पढ़ोगे तभी मीनिंग को फॉलो करेंगे। और दूसरा इसका मतलब क्या है कि फॉलो करें, यानी इसके अहकामात को फॉलो करें, जो इसमें हुक्म दिया गया फॉलो करें। लेकिन तब भी बात तो वही आ जाती है कि जब कुछ समझ आएगा तो फॉलो करेंगे ना। हमारा इस कोर्स का मकसद ही ये है कि हम कुरान करीम को समझें और इसको समझना सीखें कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो ये बताया गया कि ये अब तुम्हारी पनाहगाह बनेगी, और ये हुक्म दिया गया वत्सलू, आप तिलावत कीजिए इसमें से जो आपकी तरफ वही किया गया है, अल्लाह की किताब में से, तेरे रब की किताब में से। क्या फॉलो करना है? जो वही किया गया, किसकी तरफ से आया? अलीम की तरफ से नहीं कहा गया, हकीम की तरफ से नहीं कहा। अल्लाह ताला अलीम भी है, हकीम भी, रब भी का, तेरे रब की तरफ से आया। क्यों ऐसे कहा गया? इसलिए कि इससे जो कनेक्शन बनता है ना, वो अलीम और हकीम से नहीं बनेगा। और इससे क्या कनेक्शन बनता है? क्योंकि रब के अंदर मोहब्बत है, इस लफ्ज के अंदर ना मोहब्बत है। इसलिए ही तो आप कभी परेशान हो तो या रब, या कोई दुआ भी इंसान करता है दिल से निकलती, देखें सारी कुरान में दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं, हमारे रब है। तो रब कौन होता है? जिसने पैदा किया आपको, जो आपको पालने वाला है, जो आपको परवरिश करता है, जो आपका सस्टेनर है, आपको कायम रखने वाला है। तो जो खालिक मालिक पालने वाला है, देखिए ना ये किसकी सिफत होती है दुनिया में, इंसानों में किसकी सिफत होती है? माँ की ना, वो पैदा करती है पालती है, ये माँ की सिफत होती है। और उसके साथ क्या चीज जहन में आती? केयर, मोहब्बत आती है ना। तो रब के लफ्ज के अंदर मोहब्बत है, केयर है, यानी वो जो तुम्हारे पालने वाला है ना, जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारी तरफ जो वही कर रहा है, उसने जो किताब भेजी उसमें से पढ़िए आप। इसका मतलब है कि उस जात की तरफ से है जो तुम्हारी केयर करता है, तुमसे मोहब्बत करता है। जाहिर है वो तुम्हें पालने वाला है, पालना मोहब्बत से ही तो होता है। तो वो तो क्यों तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज भेजेगा जो तुम्हें हर्ट करने वाली हो, या जो तुम्हें मुशक्कत में डाल दे, या तुझमें परेशान कर दे? हर किस नहीं, उसने तुम्हें पैदा की। जैसे माँ नहीं कहती, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पाला पोसा है, मैं कोई तुम्हारा बुरा चाहूंगी? कहते ना आप। तो अल्लाह ताला रब का लफ्ज ला के हमें समझा रहा है कि उसको तुम्हारी केयर है, तो उसने तुम्हारे लिए ये नाजिल किया है, तुम्हें ये तुम्हारे लिए भेजी है। और इससे पढ़ो तुम, और अगर और कोई भी अल्लाह ताला की सिफत लाई जाती तो उससे इस तरह का पर्सनल एक टच ना आता। लिहाजा इस तरह से कह के हमें बता दिया गया कि अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ। जैसे कहफ वाले कहफ में जाके हिफाजत में चले गए थे, तुम अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे जब ये कुरान को पढ़ोगे। क्या तो खास तौर पे जो दावत का काम करने का इरादा रखते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का, वो तो बहुत ही काम करे। इसलिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही था, कुरान के जरिए दावत देना। तो इसलिए इसको पढ़ते ही रहना है। वत्सलू, हुक्म है, हुक्म। लोग पूछते हैं ना, ये फर्ज है क्या, ये जो आप कह रहे हैं, ये कोर्स करें, ये सीखें कुरान को, ये फर्ज है क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है कुरान पाक में? वत्लू, तिलावत कीजिए। और मैंने आपको बता दिया कि इसका माना क्या है। समझे बगैर तो तिलावत थोड़ी होती, वो तो किरात ही होती है, करके जिसको रीडिंग कहते हैं, मेयर रीडिंग है बस। तो इसलिए याद रखिए कि फॉलो करना जरूरी है इसको, और फॉलो तभी होगा जब मीनिंग पता होगा। और ये भी हमें पता चला कि हमने फॉलो करना किसको है। माँ उही अलैक, जो आपकी तरफ वही किया गया, आपकी तरफ वही ये कुरान भी है और हदीस भी है। इसका मतलब है लोगों की ख्वाहिशात को नहीं फॉलो करना, लोगों की बातों को और उनकी पसंद और नापसंद को नहीं फॉलो करना। किसको फॉलो करना? इस कुरान को। समझ आई? लिहाजा ये हम जो फॉलोइंग करते हैं और ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं, जो भी हमारे ट्रेंड्स हैं, जो भी आजकल चलता है, जो भी इन है, अगर वो कुरान और हदीस से कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता, आपकी जिंदगी के आम मामूलात हैं, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो कुरान और हदीस से कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, तो आपको इसको फॉलो करना है। ला मुबद्दिला ली कलिमाती, उसके कलिमात कभी बदल नहीं सकते, कोई बदलने वाला है ही नहीं। तो आपका मतलब है कि कुरान को बदलने की किसी ने कोशिश नहीं की? की है, बिल्कुल की है। और आज भी कई लोग कहते हैं जी फलां यहूदियों ने कोई एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर कुरान है, वो नहीं, वो तो कुरान है ही नहीं। ये है कुरान जो अल्लाह ताला की तरफ से, उसको कुरान मत कहा कर। तो ये कुरान, इसके बदलने वाला इसकी कलिमात को कोई नहीं, और आज कोई दुनिया में ये साबित नहीं कर सकता कि इस कुरान में कभी कोई चेंज आई है, कोई भी नहीं साबित कर सकता। और ये भी कि पूरी दुनिया में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे पास वो किताब है जो हमारे पैगंबर से लेकर आज तक वैसी की वैसी है, कि इसमें एक हर्फ की भी तब्दीली नहीं। कोई भी नहीं दावा कर सकता, ना क्रिश्चियन, ना यहूदी, ना हिंदू, ना कोई भी नहीं, कि कभी कोई चेंज आई नहीं। पर ये कितना बड़ा मोजा है, ये है मिरेकल इस कुरान का। तो अब इसके बाद क्या हमें मिरेकल चाहिए? और अल्लाह ताला ने ये दावा फरमाया, ये देखें कोई दावा कर भी नहीं सकता। किसी भी आप मजहब वाले को पूछ लें या किसी भी किताब के हामिल को पूछ लें, वो ये दावा नहीं कर सकता जी मेरी किताब में कोई तब्दीली नहीं हुई। ऐसे नहीं हो सकता, तब्दीलियां होती हैं। और यहां पर लेटर्स में भी तब्दीली नहीं हुई, वर्ड्स में भी तब्दीली नहीं हुई। और दूसरी ये बात है कि इसका मीनिंग भी ठीक है, लोगों ने अपने अपने मुताबिक मीनिंग्स बनाने बनाए हैं इसके अंदर से ही। कोई अपनी बिदात के लिए भी मीनिंग निकाल लेगा, कोई शिर्क का भी मीनिंग निकाल लेगा, कोई तरह की गुमराहियां भी इसी में से निकाल लेते हैं लोग। लेकिन याद रखिए, जो हक बात है ना, जो इसका असल मीनिंग है, जो ट्रूथ है, वो अभी भी प्रिजर्व्ड है। कि कैसे? वो हदीस की फॉर्म में प्रिजर्व्ड है, कि कोई चाहे अगर के अपने मनमाने माने करे तो करता फिरे, लेकिन जो हक का तलाश करने वाला होगा वो जाके हदीस देखे, उसको पता चल जाएगा इसका ये माना है, इसका ये माना नहीं है जो ये बता रहा है, जो ट्विस्ट ये कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात पता चली, ली कलिमात ही, उसके कलिमात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बात है कि ये बात साबित करती है कि इस कुरान में जो भी वर्ड्स हैं वो अल्लाह ताला के हैं। इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि एक फिरका गुजरा है, अशायरा उनका नाम था। वो कहते हैं कि ये जो अल्लाह ताला की कलाम है, इसमें वर्ड्स अल्लाह ताला के नहीं है, सिर्फ मीनिंग अल्लाह का है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद ही वर्ड डाले हैं, यानी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दिल में मीनिंग डाल दिया, तो वर्डिंग उन्होंने खुद ही बना ली। और तो वो ये मानते नहीं कि अल्लाह ताला के अल्फाज है। तो इस चीज को समझना चाहिए कि यहाँ पे कहा गया कलीमाती ही, उसके कलेमात को। अगर ये मीनिंग ही होता तो मीनिंग को, यानी अल्लाह ताला के पास मीनिंग को जाके कौन बदल सकता है, ये तो कोई बात ही नहीं बनती। मीनिंग तो उसके पास ही है, मीनिंग तो नहीं यहाँ पे। तो ये उसके कलेमात हैं, और कलेमा जब कहते हैं तो मीनिंग को कलेमा नहीं कहते, वर्ड को कहते हैं। और ये भी हमें यहां से पता चला कि इस दीने इस्लाम का जो सोर्स है कुरान, ये रहती दुनिया तक, कयामत तक ये ऐसे ही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकेगा। तो ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि जो है ना, हाय उन्होंने बदल दिया, और इन मैसेजेस को आगे भेजने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इनको इग्नोर किया करें। मत इस तरह से उन लोगों को और ज्यादा शोहरत दें जो गलत काम करते हैं, बल्कि इग्नोर करने में बेहतरी है, ताकि ना ऐसे लोगों को अपनी मौत खुद मर जाएंगे वो। हाँ, इतने आए 1400 साल में, मतलब है आपका कोई आज ही तो नहीं हुआ? इतने लोगों ने कोशिशें की, कहाँ गई उनकी कोशिशें? किधर है उनके वाले लिखे भी चीजें जो वो कहते हैं कि ये है कुरान, वो क्लेम करते हैं, हम तो नहीं कहते वो कुरान, तो उसको कुरान ही ना कहें, वो क्लेम करते हैं तो वो कुरान नहीं, वो तो अभी अपनी मौत आप मर जाएगा। लेकिन हमें क्या जरूरत है कि हम अपना हिस्सा डालें और उसके अंदर उसको शोहरत देते रहें, देखो जी उन्होंने ये फिल्म बना ली, देखो जी उन्होंने ये किताब निकाल ली, देखो उन्होंने ये वेबसाइट बना ली। तो ये इसको, चीजों को इग्नोर किया करें। और ये भी हमें पता चलता है कि वो कोई फैसला भी कर दे तो उसका फैसला भी बदल नहीं सकता, उसके कलेमात नहीं बदल सकते ना, उसकी कहीं भी बात नहीं बदल सकती। और इसमें फिर हम उसी तरफ अगर आते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने कह दिया कयामत के दिन कि कोई जहन्नमी है, तो कोई उसके फैसले को नहीं बदल सकता, कोई उसकी बात को यानी चेंज नहीं कर सकता, यानी उससे कुछ और कहलवा ले, कोई उसने बात कह दी ना, उसने फैसला दे दिया, अभी तो उसकी बात है, उसकी कलेमात है, तो फिर कौन वहां पे खड़ा होके बचाएगा। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। और इसका मुहाफिज भी अल्लाह ही है, अल्लाह ताला ही इसको प्रिजर्व रखने वाला है, इसको सेव करने वाला है, उसको कोई जरूरत नहीं किसी की के कोई इसकी रखवाली करे, अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम कर लिया। आज भी देखें कितने हजारों लोग हैं जिनके सीने में ये कुरान है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर पेपर वाला कुरान कोई कॉन्फिस्केट कर ले, कोई नहीं उसको लोगों तक पहुंचने दे, तो सीनों में कुरान मौजूद है। और ये सिर्फ इस उम्मत का ही एजाज है, वलन तजिद मिन दूनी मुल्तहदा, और तू नहीं पाएगा उसके सिवा कोई पनाह की जगह, जिसको अल्लाह ना पनाह दे उसके लिए कोई पनाह की जगह नहीं। वो किसी को पकड़ना चाहे तो वो कहीं जाके छुप नहीं सकता कि मैं जाके फलां के पास पनाह ले लूं, मैं उसके दामन में पनाह ले लूं, मैं उसकी, वो मुझे बचा लेगा, वो मेरा कोई कारसाज बन जाएगा, नहीं। जिसका अल्लाह ना बना तो उसका कोई भी नहीं है। तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनको पनाह दे दी कहफ में, तो कैसे उनके लिए अल्लाह ने निजाम चला दिया पूरा कि वो सेफ रहे। अपने सूरज को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मखलूक को एक कहफ वाले, यानी छोटे से लड़के ही थे ना, उनके लिए काम में लगा दिया, एक कुत्ते को काम में लगा दिया कि आप अल्लाह ताला जिसको पनाह देना चाहे दुनिया नहीं ढूंढ सकती उसको, या दुनिया नहीं उसका कुछ बिगाड़ सकती, जिसको अल्लाह पनाह दे दे। इसलिए अपने लिए अल्लाह ताला को ही अपना मुहाफिज समझना चाहिए कि वो ही मेरा मलजा है, अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं, उसको ना मैं नाराज करूं, और ये ना सोचूं कि वो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला की तो खैर है, तो कोई और ना नाराज हो जाए, फलां पीर, फलां मुर्शिद, फलां जो भी है, वो ना हमसे कहीं नाराज हो जाए, इन्होंने ही हमें वहां पे पार कराना है। कैसे कोई पार करा सकता है, कुरान कहता है कि तुम उसके अलावा कोई पनाहगाह पा ही नहीं सकते। लिहाजा इसका मतलब है कि अगर कोई पनाहगाह है तो वो सिर्फ, या कोई हिफाजत कर सकता है तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि चाहे दौरे फितन है ये या दज्जाल का जमाना आ जाता है, इसको समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए पनाहगाह क्या है। और कई लोग हिफाजत चाहते हैं इस चीज से कि वो आंख बनी हुई है, कोई नीली आंख है उसको लगा देते हैं, वो घर के दरवाजे के ऊपर लगाई हुई है ऐसी चीजें जिसमें आंख बनी हुई है, कहीं हाथ पूरा पंजा बना हुआ है उसके बीच में आंख बनी हुई है, ये आपकी पनाहगाह है, कितने कमजोर सहारे आपने लिए कि दरवाजे के ऊपर वो लगाया हुआ। तो ये चीजें, ऐसी शिरकिया चीजों को छोड़ देना चाहिए। और फिर मैं ये छल्ला पहन लूंगी इस उंगली में, ये पत्थर पहन लूंगी, ये मुझे पनाह देगा या मेरी हिफाजत करेगा या मुझे ऐसे बचाएगा, तो ये सारी शिरकिया बातें हैं। और फिर ऐसे लोगों के पास जाना जिनके पास आप समझते हैं कि इनको बस राजी कर देंगे तो ये बस हम, हमारे साथ ये हो गए ना, तो बस फिर वहां पे इन्हीं का पल्ला पकड़ के हमने जाना है। ये सारी बातें इसके बाद समझ आ जाती हैं कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, पनाहगाह सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। वस्बिर नफ्सका मा अल्लदीन यदउन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी। देखें ये वाली जो आयत है इसका एक शाने नजूल भी है, हम वो भी देख लेते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि इसका अमूमी माना भी है। कि नबी अलैहिस्सलाम के पास आपको पता है कि कौन से सहाबा बैठते होते थे? बिलाल, खब्बाब, सुहैब, इस तरह के रजी अल्लाह अन्हुम, ऐसे सहाबा कराम जिनका माशरे के अंदर कोई ऐसा खास मकाम नहीं था। ये वो सहाबी थे जिनका स्टेटस उस माशरे में बहुत नीचा था। अब ऐसे वक्त के अंदर जो लोग मालदार थे, बड़े बड़े सरदार थे, वो कहते थे कि आप इनको क्यों अपने पास बिठाते हैं? हम तो चाहते हैं कि हम आपके पास आके कुरान सुने, ये करें, लेकिन आपके पास ये लोग बैठे होते तो हम कैसे आए? तो इसलिए लिहाजा हम नहीं आ सकते। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी हिर्स थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ये लोग सुन लें किसी तरह, और अगर ये सरदार ईमान ले आते हैं ना तो इनके पीछे इनकी बड़ी फॉलोइंग है। जाहिर है सरदार थे, हर माशरे में लोग सरदारों को, बड़ी एलीट क्लास को देखते हैं। तो ये अगर मुसलमान हो जाते हैं तो पता नहीं कितने, जैसे आज हमारी भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि फलां फिल्म एक्टर मुसलमान हो जाए, या फलां क्रिकेटर मुसलमान हो जाए, या फलां और कोई स्पोर्ट्समैन मुसलमान, देखो इससे कितना फायदा होगा। तो उसी तरह यानी ये लोग जो कुफारे मक्का थे, आपसे सबको था कि ये मुसलमान हो जाए तो कितना इससे फायदा होगा इस्लाम को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सोचते ही थे कि मैं इनको कह दूं कि भाई आप लोग जरा ऐसा करें कि मतलब उठ जाया करें उस वक्त। तो अल्लाह ताला ने सूरह अनाम में भी आया, तो तारी वाला तो बच्चा, वो भी इससे सिमिलर है कि आप दूर ना करें जो सुबह शाम अपने रब की इबादत करते रहते हैं तो अल्लाह की रजा जुई के लिए, तो आप उनको दूर ना करें अल्लाह के चेहरे के लिए जो ऐसा करते हैं। तो इससे हमें यहाँ पे भी पता चला कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को ये इंस्ट्रक्शन दी, आप अपने आप को उन लोगों के साथ रखे हैं। नबी कौन कौन से लोग? जो बहुत अमीर होते हैं, जो बहुत एलीट क्लास होती है, जो बहुत फैशनेबल होते हैं, ये चीजें हम देखते हैं ना, या जिनके पास बड़ी बड़ा जबरदस्त प्रोफेशन है, बहुत बड़ी कहीं जगह पे लगे हुए हैं, कोई बड़ी पोजीशन है, उनके साथ रखे नहीं। जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम। सुबह और शाम का मतलब क्या है? जैसे आप कहते हैं ना सुबह शाम तुम तो खेल में लगे हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 24/7 यही काम करता है, मतलब एक अक्सर वक्त में वो यही काम करते हैं, या सुबह और शाम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ये उनकी तारीफ है। युरीदू ना बचा, वो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं, अल्लाह का चेहरा चाहते हैं यानी अल्लाह ताला का दीदार चाहते हैं, यानी उनके अंदर इतना इखलास है, इतनी सिंसेरिटी है, उस सिंसेरिटी से उनका कोई और मकसद नहीं है लोगों को इम्प्रेस करना, लोग हमें नेक समझे, लोग हमें कोई बड़ा समझे, नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला का दीदार हो, वो अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, पुकारते हैं अल्लाह को, मतलब क्या, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करते हैं, उसको याद करते हैं, उससे दुआएं करते हैं। और खास तौर पे दो औकात का यहाँ पर जिक्र आया है। आपको पता है वुदू कहते हैं सुबह सवेरे को, और आशी कहते हैं शाम को जब रात शुरू होने लगती है, और यही टाइम फजर के भी और असर के बाद के भी यही टाइम होते हैं जब शाम हो रही होती है, तो उस वक्त तो खास भी हमें अजकार करने का हुक्म दिया गया, जो सुबह शाम की दुआएं हैं वो हमें हिफाजत की दुआएं इन टाइम से करने का हुक्म दिया गया। तो ये इन लोगों के साथ आप अपने आप को रोके रखें, यानी इन्हीं के साथ रहें, इन्हीं की कंपनी में रहें, ऐसे लोगों को ना छोड़ें आप। अब इससे हमें पता चलता है ना कि जो कंपनी है वो, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा जा रहा है, आपको क्या जरूरत है? आपकी तो कंपनी के लिए लोग तरसते कि जो आपके साथ बैठते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है आप इनके साथ बैठे, कितना इनको अल्लाह ताला ने ऑनर दिया ऐसे लोगों का। हालांकि ये क्या थे? गरीब लोग थे, गुलाम लोग थे, और ये भी तफसीरों में आता है ऊन के जुब्बे पहनते थे, गरीब जो थे बेचारे, तो गर्मी की वजह से उनके तरफ से स्मेल आती थी, तो वो बड़े बड़े लोग कहाँ चाहते थे कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठे। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, इससे इन लोगों की अहमियत अल्लाह की नजर में क्या है आप अंदाजा कीजिए। यानी अल्लाह ताला ये नहीं देखता किसके पास कितने पैसे हैं, कि कौन किस पोजीशन पे, अल्लाह ताला के नजदीक कोई और चीज है क्राइटेरिया। तो जब इस्लाम आया ना तो समझ ले शफल हो गई पूरी सोसाइटी, वो ये थे जिनको लोग समझते थे कि बहुत बड़े हैं, वो नहीं बड़े रहे, कोई और बड़े हो गए। क्योंकि इस्लाम बड़े या ज्यादा काबिले इज्जत उसको नहीं कहता जिसके पास पैसे ज्यादा होते। इस्लाम की नजर में काबिले इज्जत वो है जिसमें तकवा ज्यादा है, जो अल्लाह को याद करने वाले लोग होते। तो नेक लोगों से जुड़े रहने का कहा गया। अब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कही गई। अच्छा पहले हम इस चीज को मुकम्मल कर देते, फिर मैं अमूमी माना भी आपको बताते। वला तादु आईना का अनु, और आपकी नजरें इनसे बियॉन्ड ना जाएं, बियॉन्ड देम यानी इनको छोड़ के किसी और की तरफ देखना, इनसे नजर फेर के कोई और की तरफ। तुरीदु जीनत अल हयात दुनिया, तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी की जीनत। अच्छा अब कहा गया कि ये बाज तफसीरों में ये कि ये काफरों को कहा जा रहा है कि तुम लोग चाहते हो दुनिया की जिंदगी की जीनत, और बाज जगह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह के असल में आप सल्लल्लाहु तो दुनिया की जिंदगी की जीनत कहाँ, आपकी तो जिंदगी ऐसी नहीं थी, लेकिन उम्मत को बताया गया। बाज जगहों पे कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके सुनाया उम्मत को जा रहा होता है। तुम जीनत दुनिया की जिंदगी की चाहते हो, और देखिए अब पहले बता दिया कि किनके साथ रहना है, और ऐसे लोगों की तरफ ना देखें जो दुनिया की जिंदगी की जीनत के पीछे रहते हैं, यानी यहीं के ऐश आराम पैसा स्टेटस, ये दुनिया की जिंदगी जीनतें हैं ना, औलाद बड़े करियर्स। बोला तो थे अमन अगफल नकल बहु अंतिक्रीना, इतनी जबरदस्त आयत है हमारी जिंदगी की रहनुमाई के लिए। और खास तौर पे जैसे हम सोचते हैं ना कि फितना दिज्जाल के वक्त इस सूरह कहफ को पढ़ा जाए, तो कंपनी बहुत मैटर करती है, जिनकी कंपनी में रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। तुम उन चीजों के उन लोगों के इतात ना करो, उनको फॉलो ना करो जिन जो कैसे हैं, जिनको दिल हमने गाफिल कर दिया हमारी याद से, उनको अल्लाह नहीं याद रहता। उनको बिजनेस का पता है कि कौन सा बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, घर कैसे रखने हैं, आजकल कौन सा फैशन इन है, कौन सी चीज इन है, अपग्रेड्स कहाँ पे हो रहे हैं, क्या चीज चल रही है, वो सब पता है, लेकिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल। पत्ता हवा वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे जाते हैं, और क्या ना अमरू फुरू था, उनका मामला हद से बड़ा हुआ, हद से निकल गए हैं, इसराफ में, तबजीर में, खुशियों में, गम में, इस पहनने ओढ़ने में, पार्टी करने में, हर चीज में हद से ही बढ़े जाते हैं वो। उनको मत फॉलो करना जो अपनी ख्वाहिशात का बंदा है, बस जहां पे ख्वाहिश पूरी होती है वो उस तरफ चल पड़ता है। देखिए ना, एक वो लोग हैं जो अल्लाह का जिक्र दिन रात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी किधर को गुजर रही है, और एक है जो ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है। ख्वाहिशात की तो कोई इंतहा नहीं। आप देखें, अल्लाह हु अकबर, आप एक शॉपिंग शुरू कर देना, ऑनलाइन बैठ जाएं, आप सारा दिन आपका गुजर जाएगा, ये चीज देख लें, वो चीज कर लें, वो चीज खरीद लें, ये नहीं सही, वो नहीं सही, वैसे पूरा दिन आपका अपनी ख्वाहिशात के पीछे ही भागते भागते गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा दिन किधर गया। फिर आप देखें, पहनने की ओढ़ने की ख्वाहिशात, फिर उसके बाद अपनी जो मेंटेनेंस है अपनी, वो उसकी ख्वाहिशात, फिर अपनी घर बार, अपनी जॉब्स, अपनी ये इसके अंदर ख्वाहिशात, कोई लोग पैसे के ही पुजारी बन चुके, उसी के बंदे बन गए, उसी की गुलामी में चल रहे हैं, वो ख्वाहिशात हैं कि कभी पूरी होने का नाम नहीं लेती, एक के बाद एक ओहदा, उसके बाद उससे ऊपर का ओहदा, उसके बाद उससे ऊपर का ओहदा, और फिर पैसा आज इतना है तो कल एक, आज 1 मिलियन है तो कल 2 मिलियन होना चाहिए, और परसों 3 होना चाहिए, और इसी की प्लानिंग, इसी की सोचें, इसी की फिकरात, इसी में गुम। इनके जिक्र तो अल्लाह के, इनके दिल तो अल्लाह की याद से गाफिल है, और इंसान की बातों में भी फिर यही चीजें झलकती हैं। जाहिर है वो जिस मजलिस में बैठेगा वहां पे भी यही बातें करता है, तो जब वो यही बातें करेगा तो उसकी कंपनी में बैठे लोगों को क्या होगा, वो भी फिर यही करेंगे। आप देखते हैं बाज लोगों, बस उनका यही टॉपिक होता है कि उन्होंने ये बताना होता है हमारा पोर्टफोलियो कितना जबरदस्त है, कितना बड़ा है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ है, मेरे घर किधर किधर है। तो कहा गया डोंट स्टे अराउंड दीज पीपल, ये बस ख्वाहिशात के ही बंदे। अपनी कंपनी का जायजा लें, क्योंकि कुरान भी आपको तभी चेंज करेगा जब आप अपनी कंपनी चेंज करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त ऐसे वैसे, याद रखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। और जिस बंदे का दीन ईमान ही दुनिया है और दुनिया की जीनत है, तो फिर दूसरा उसकी कंपनी में रहने वाला भी क्या बनेगा, उसकी भी फिक्र क्या हो जाएगी। आप एक जगह से उठते हैं, आपका दिल डिप्रेस होता है, आप कहते हैं हाय मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इसका मतलब किस कंपनी से आप उठे, ये अल्लाह की याद की कंपनी तो नहीं थी। दोस्ती के मामले में, टाइम स्पेंड करने के मामले में, हैंग आउट करने के मामले में बताया जा रहा है कि किन के साथ करो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई ना, रब्बना ला तजअलिद दुनिया कबार हम्मिना वला मबलग इल्मिना, अल्लाह दुनिया कोई मेरा सारा गम और मेरे इल्म की इंतहा ना बना देना, कि मैं बस इसके पीछे ही भागता रहूं, यही मेरा हम और गम बन जाए, इसकी बस फिकरात मेरे सर पे सवार है। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि बस आप एक सफेद जोड़ा पहन के एक तरफ होके बस तस्बीहां करती रहे, ये नहीं कह रहा। आप खाएं भी पिएं भी रहें सहें भी, मगर इसको अपना गम हम ना बना लें, इसको अपनी फिकरात का महवर ना बना लें। बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिल को अल्लाह गनी कर देता है, और ये वही लोग होते हैं, जैसे हदीस में भी आता है, पता चलता है हमें, सामने मेरे अल्फाज नहीं है लेकिन हमें पता चलता है कि जो अपना गम आखरत का बना लेता है, अल्लाह ताला उसके कामों को समेट देता है, दुनिया फिर उसके पीछे भागती है, और अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देता है। और जिसका असल गम दुनिया बन जाता है, अल्लाह ताला उसके कामों का बखेर देता है, और दुनिया के पीछे वो भागता रहता है और फिर भी नहीं उसको हासिल होती, और उसका दिल परेशान रहता है, तो परेशान रहेगा। जब कोई इंसान यही करता रहेगा कि इसके पीछे ही भागता रहेगा, तो फिर यही होगा ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए ऐसे लोगों के साथ बैठना जो सुबह को, जब सूरज तुलू हो रहा है उस वक्त से लेकर, जब फजर है तो उस वक्त से लेकर सूरज तुलू होने तक, उनके साथ बैठना जो अल्लाह का जिक्र करते हैं इस टाइम में, मेरे लिए बेहतर है 4 गुलाम आजाद करने से औलादे इस्माइल में से। यानी उनके साथ बैठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद था, तो जो उनकी तरफ मत देखते रहे जो दुनिया की जीनत में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि दिल में उससे क्या होगा, हसद आएगा, लालच आएगा, और अपनी हालत पे अफसोस रहेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, नाशुक्री पैदा होगी। इसलिए बताया गया हमें कि कौन लोग हैं जिनके साथ आपको रहना है, और आप ये भी देखें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर अल्लाह को याद करने वाले वो लोग हों जो कि बहुत मालदार नहीं है, हम कहते हैं हम इनके साथ बैठेंगे तो हमारा क्या स्टेटस रहेगा, उनके साथ बैठते हैं जो शो ऑफ करने वाले होते हैं, जो उनके पास बहुत पैसा होता है वो अपना पैसा दिखाते भी हैं, या जिनके पास ओहदा बहुत होता है तो हमें बड़ा फखर होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके साथ बैठते थे, खुद सोचें, ऐसे लोगों के साथ जो गरीब थे, जो मिस्कीन थे। और कयामत के दिन भी फरमाया, मुझे कहीं और ना मैं मिलूं तो मुझे उन मिस्कीनों के अंदर ढूंढ लें। अब आप बताएं कि हमारे जानने वालों में कितने लोग हैं जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, कभी विजिट किया ऐसे किसी बंदे को, और कितनों के साथ हम कभी बैठ के खाना खाना पसंद करेंगे, या कितनों को हम कभी दावत पे बुला सकते हैं, अपने घर में बुला सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप तो गुलामों के साथ भी बैठ जाते थे, उनकी मजलिसों में बैठेंगे, जाहिर है हजरत बिलाल, हजरत सुहेब, हजरत खपाब क्या थे, गुलाम ही थे, हजरत अम्मार वो बहुत उस जमाने के गुलामों में से थे, और गुलाम तो आज के नौकरों से भी नीचे का दर्जा है, उससे कोई और नीचे का स्टेटस नहीं होता सोसाइटी। अल्लाह अकबर। एक हदीस में आता है, एक आदमी गुजरा, बड़ा अपने तम तड़ाक से साथ गुजर रहा था, बड़ी शानो शौकत के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा कि इसके बारे में तुम क्या कहते हो? वो बोले, ये तो बड़े मोअज्जिज़ीन में से है, कसम खुदा की अगर ये कोई बात करता है तो लोग सुनते हैं, अगर कोई सिफारिश करता है तो उसकी सिफारिश कबूल की जाती है, अगर किसी के घर किसी की लड़की का रिश्ता मांगेगा तो रिश्ता दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। दूसरा आदमी गुजरा जाता है ना, उसकी हालत इतनी कोई अच्छी नहीं थी, बड़ा हालत ऐसी थी। तो आपने फरमाया कि इसके बारे में क्या कहते हो? वो बोले, या रसूल्ला, ये तो मिस्कीन लोगों में से है, अगर ये कोई बात कहता है तो उसकी बात सुनी नहीं जाती, कहीं सिफारिश करता है इसकी सिफारिश नहीं कबूल की जाती, कहीं रिश्ता डालेगा तो कोई रिश्ता ही नहीं इसको देगा। आप ने फरमाया, ये गरीब आदमी बेहतर है उस पहले से, या ये कह सकते हैं कि वो जो जो अमीर आदमी था ना, उसके जैसे इतने आदमी हों जिनसे जमीन भर जाए, तो उन सब से बेहतर ये गरीब आदमी, इतने सारे हों, ये एक उन सारों से ज्यादा बेहतर है। मगर हम कैसे देखते हैं उनको, जो माल में कम होते हैं, स्टेटस में कम होते हैं, तो उनके पीछे ना चलें जो अपने ख्वाहिशात के बंदे हैं, जिनके अंदर अल्लाह का जिक्र ही नहीं। और मत फखर करें इस बात पे भी मेरी दोस्त वो है, उनके वो बहुत अच्छी कहीं जानी पहचानी, या कोई बहुत बड़ी डिजाइनर है, या बहुत बड़ी कोई एक्ट्रेस है, या बहुत बड़े गाने वाले हैं। याद रखें, जिन लोगों के साथ आप दोस्ती करेंगे, जिनके साथ आपकी मोहब्बत होगी, जिनके साथ आपकी एफिलिएशन होगी, दुनिया में भी इसके असरात होंगे, और ये यही नहीं खत्म हो जाने, आखरत में भी सिर्फ दोस्ती एक ही होगी जो कायम रहने वाली होगी, और वो होगी मुत्तकीन की दोस्ती। जो मुत्तकी नहीं है ना, जो बुरी दोस्त, अब कोई दूसरा भी बुरा था, उसको किसी ने अगर दोस्त बना लिया, तो कयामत के दिन एक दूसरे पे लान तान करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, कहेंगे काश मैं तुझसे दोस्ती ना करता, तूने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पे भी जाके एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, सारी दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाएंगी सिवाय मुत्तकीन की दोस्ती की। तो आज ऐसी बातों को दोस्ती करने में, ऐसी बातों को नहीं सामने रखा जाता, बस कोई नामी गरामी होना चाहिए, मशहूर होना चाहिए, या पैसे वाला होना चाहिए, या कुर्सी वाला होना चाहिए, तब बस ठीक है, यही क्राइटेरिया है हमारा। हमें क्या क्राइटेरिया बताया था? और क्या ऐसे लोगों के साथ रह के हमारा जब फितरों का दौर होगा तो हमारा ईमान बच सकेगा? खुद सोचिए क्या हाल होगा ईमान का। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जिस शख्स को उसकी सूरत में, शक्ल में और रिस्क में फजीलत दी गई है, उसको चाहिए कि उसकी तरफ देखे जो उससे कम है, जो उससे कम है, ताकि आपके अंदर ये ना हो कि हाय ये कितना अमीर और ये कितना ज्यादा इसके पास पैसा है और मेरे पास कुछ नहीं है, ये इस लायक है कि वो फिर शुक्रगुजार होगा। तो जब आप औन बिन अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं ना कि मैं अमीरों की मस्जिद में रहा तो मुझे यही गम रहता था कि फलां की सवारी मेरी सवारी से अच्छी है, फलां के कपड़े मेरे कपड़ों से अच्छे हैं, और जब मैं फुकरा की मजलिस में आया तो मैं पुरसकून हो गया। समझ आई? और एक हदीस से हमें पता चलता है, सबके लिए हदीस बड़ी समझने वाली है, कि अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि एक शख्स ने हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस से सवाल किया कि मैं फुकरा और मुहाजरीन में से नहीं हूँ, यानी क्योंकि फुकरा और मुहाजरीन आपको पता ना, इनका बहुत बड़ा स्टेटस था इस्लाम की नजर में, क्योंकि फुकरा महाजरीन के बारे में हदीस है, एक हदीस में आता है 40 साल पहले वो जन्नत में चले जाएंगे अमीरों से, एक हदीस में आता है 500 साल पहले वो जन्नत में चले जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारे पास बीवी है जिसके पास तुम रहते हो? उसने कहा हाँ। फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए मकान है? उसने कहा हाँ। फिर फरमाया, तुम तो अगनिया में से हो, अमीरों में से हो, आज किसी के पास मकान भी होता है, शौहर भी है, बच्चे भी हैं, कहते हम बड़े गरीब हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। उन्होंने फरमाया, तुम अमीरों में से हो। उसने कहा, मेरा तो एक खादिम भी है। तो फरमाया, तुम तो बादशाह हो, बादशाहों में से हो, और हम सोचें कि कितना कुछ रखते भी रोते रहते हैं हर वक्त, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फलां के पास इतना कुछ, फलां के पास इतना कुछ, देखो वो वेकेशन पे कहाँ जाती है, देखो उसके पास कौन सी गाड़ी है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये दुरुस्त रवैया नहीं फरमाया, वो तुम बादशाहों में से हो तो हम तो सारे ही फिर बादशाह मलकाएं हैं फिर। अल्लाह अकबर। और फिर हफ्सलम ने ऐसे लोगों के बारे में जो स्टेटस में कम होते हैं, देखें कयामत के दिन वो इतनी पहले भी चले जाएंगे जन्नत में, और आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें उस बारे में ना बताऊं जो जन्नत का अहल है। हर वो शख्स जो कमजोर है, अगर वो कसम खा ले कि अल्लाह फलां काम करेगा तो अल्लाह ताला उसकी कसम पूरी कर देते। सोचें आप जरा कि अल्लाह उसकी कसम पूरी, अल्लाह के नजदीक हो सकता है कोई इतना काबिले कदर हो। फिर फरमाया क्या मैं तुम्हें उनकी खबर ना दूं जो जहन्नुम का अहल है, रेजिडेंट है। हर वो शख्स जो बदमिजाज है, जो सरकश है, जो मुतकब्बिर है, और इल्ला माशाल्लाह, मतलब सारे नहीं है ऐसे होते, लेकिन अक्सर मालदार लोगों के अंदर तकबर होता है। और आप सबने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारी जो मदद है ना, तुम्हारे कमजोरों की वजह से की जाती है, उनकी वजह से तुमको रिस्क दिया जाता है। तो इसको कभी आर ना अपने लिए समझे कि हाय मैं इन लोगों के साथ बैठूं, आए इन लोगों के साथ हम खाना खा ले, आए इन्होंने शादी पे बुलाया हम इनके चले जाएं। कई लोग तो अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये गरीब है, लोग फिर हमें इनसे पहचानेंगे। तो याद रखिए, आपके दोस्तों का इम्पैक्ट आपके पर जरूर होगा, चाहे आप इसको माने या ना माने। मालिक बिन दीनार कहते हैं ना कि ये बेहतर है कि इंसान अच्छे लोगों के साथ रहे और मुशक्कत काट ले, पत्थर ढो ले, ये बेहतर है इससे कि इंसान शरीर लोगों के साथ रहे जो हलवे खा रहे हैं। यानी हलवे खाने, एक वो बेचारे गरीब से लोग हैं वो, लेकिन वो नेक लोग हैं, उनके साथ रहना बेहतर है बजाय बुरे लोगों के साथ हलवे खाने के। और किसी और की बात, ये बड़े अच्छा उनका कोट है कि फरमाया कि जो नेक दोस्त है ना वो बेहतर है तन्हा रहने से, और तन्हा रहना बेहतर है बुरे दोस्तों से। अगर आपको कोई अच्छा नहीं मिल रहा ना तो बेहतर है कि आप तन्हा ही रहते, बजाय इसके कि दोस्ती तो कहीं ना कहीं करनी है, चलो इससे ही कर लेते हैं, कंपनी तो चाहिए नहीं। और ये सोहबते सालेहीन जो है, ये ऑप्शनल बात नहीं है, ये चॉइस नहीं है कि मैं चाहे उनसे कर लूं, ये कुरान कह रहा है। अच्छी सोहबत के बड़े फवायद हैं, अच्छे नेक लोग आपको नेकी की तरफ मायल करेंगे, उनके साथ बैठ के आपको आखरत याद आएगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक दोस्त की मिसाल क्या दी, जो खुशबू बेचने वाला है, और उसे आप या तो खुशबू खरीद लेंगे या आप उसके साथ बैठेंगे तो वो आपको खुद खुशबू लगा दे देगा, या फिर आप बैठने से ही आपके अंदर खुशबू आने लगेगी, वो आपको हो सकता है तोहफे में दे दे, क्योंकि वो आप उसके पास बैठे में ना। और दूसरी की बुरे की मिसाल ब्लैक स्मिथ की भट्टी झोंकने वाले की है, आग के चिंगारे जब उड़ेंगे तो हो सकता है आपके कपड़े जला दें, अगर कपड़े नहीं भी जलेंगे तो जैसे सिगरेट पीने वाले के पास से, बैठने वाले के पास से, उसके अंदर भी चाहे वो सिगरेट नहीं भी पीता, इन आप सिगरेट वाले के पास बैठ जाएंगे आपके अंदर से सिगरेट की बू आने लगेगी। तो उसी तरह उसके पास, भट्टी झोंकने वाले के पास बैठेंगे तो आपके अंदर से स्मेल आने लगेगी। तो ये मिसाल आप सरसरम ने दी है इस चीज की कि आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है अपने दोस्त का। हत्ता कि आप सरसरम ने फरमाया मोमिन के अलावा किसी को अपना दोस्त ना बनाओ, और तुम्हारा खाना सिर्फ मुत्तकी लोग ही खाना खाएं, यानी आप दावत पे बुलाएं, आप अपने खाने पे बुलाएं, तब भी नेक लोगों को बुलाएं, ये नहीं कि सारों को मत, इनके साथ कॉन्टेक्ट जो बनाने हैं, हमें कॉन्टेक्ट की तो बड़ी फिक्र होती है ना। और हत्ता के सोचे सुभान अल्लाह, एक मसनून दुआओं में से दुआ भी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन यौमि सुअ मिन लैलति सुअ मिन साअति सुअ मिन साहिबि सुअ व मिन जारि सुअ फी दारिल मुकामा, मुझे बड़ी पसंद है यह दुआ, क्योंकि पता नहीं होता ना कि कौन सी घड़ी, कौन सा शर, कौन सी चीज दिन और रात में किस वक्त आप इंसान को लग जाए, तो बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी, बुरे दोस्त, बुरे हमसाये से अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, बहुत प्यारी दुआ है। लिहाजा देखें आप अपने इर्द गिर्द, देखें कि आपका सर्कल किन लोगों का है। अगर वो बिखरे बालों वाले हैं, मामूली कपड़ों वाले हैं, कोई ब्रांड में, तो हम कहते हैं इसको तो पहनना ओढ़ना ही नहीं आता इसको, अगर वो नेक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इब्ने जौजी फरमाते हैं कि मैंने किसी को भी नहीं देखा कि कि वो मोमेंट को इतना शार्प पहुंचाए जितना ज्यादा ऐसे लोगों के साथ मेलजोल रखना जो इस लायक नहीं है। यानी ऐसे लोगों के साथ मेलजोल रखना इतना नुकसान पहुंचाता है ना कि आप इसको सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान का दीन डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ईमान कम हो जाता है। आप जो आप खुद देखा करें कि आप किसी मजलिस से क्या लेके उठे, क्या आपको मिला है वहां से। अब देखिए इनका साथ जो होता है ना नेक लोगों का, अगर आज इंसान दुनिया में देखे तो बहुत सारे फवायद जहां हैं, मरने के वक्त भी आप देखते हैं किसी के जनाजे में आप देखना कौन लोग आए होते हैं, जो उसके साथी, जो जो उसके दोस्त थे, जो उसके मिलने जुलने वाले थे। तो अगर किसी के मिलने जुलने वाले ऐसे थे जिनको ना नमाज जनाजा पढ़नी आती, ना जनाजे की दुआ का पता है, ना उसके बाद कोई दुआएं करने वाले, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, मुझे किसी की याद आ गई कि कोई बड़ी एक प्यारी थी वो, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, नो उसने अपनी जिंदगी बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दी, कहाँ क्या चीज होती थी और उसके बाद दीन की तरफ आ गई, क्लास में आ गई। लेकिन उसके वो वाले दोस्त तो थे जो पुराने होते थे, तो जब एक दफा मैं उसके उसी पुराने दोस्त से मिली तो मैंने कहा मुझे वो बड़ी याद आती है, बड़ी उसके लिए दिल से दुआ भी निकलती है। तो उसने ऐसे बेपरवाही का मुजाहिरा किया कि मैं सोच में पड़ गई कि या अल्लाह ये वही है जो उसके इतने दोस्त होते थे, आज इनको परवाह ही नहीं, यानी उसका जिक्र करने पे भी वो थोड़ी सी सैड भी नहीं हुई कि जो है ना हाय हाँ हमें भी बड़ी याद आती है, या कुछ इंसान कहता है कि हमारी तो बड़ी प्यारी वो दोस्त थी, कुछ भी नहीं, वो अपने मजे में लगे। तो ये जो ऐसे दोस्त होते हैं ना, ये फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं, ये बस आज आपके दोस्त हैं कल को उनको आपकी याद भी नहीं रहेगी, वो उसी तरह मजों में लगे होंगे, उनको नहीं परवाह है कि हमारा कोई दोस्त चला गया या क्या है, वो बस वो दोस्त होते हैं जो कि यानी फन टाइप, फन लवर्स, कल आज आपके साथ फन है कल किसी और के साथ फन होगा। तो इसलिए जो अपनी ख्वाहिशात के बंदे हों, जिनको दीन की परवाह ना हो, दीन का इंटरेस्ट ना हो, आप वो बस आप उनके साथ बैठे तो वो आपको और ही कई बातों में उलझाए रखे, तो फिर आप ऐसे लोगों से आपको खुद समझदार है कि इनके साथ दोस्ती करना आपको कितना नुकसान दे सकता है। इसलिए ऐसे लोगों की कंपनी से खुद को निकालें। देखिए हम अपने रिश्तेदारों को तो चूज नहीं कर सकते, हम अपने जहां पे इंसान की शादी हो जाती है वो भी इंसान नहीं बदल सकता, अपने बच्चों को भी नहीं बदल सकता जो अल्लाह ने दे दिए, लेकिन दोस्तों के मामले में तो आपके पास चॉइस होती है ना, फिर उसमें क्यों नहीं आप अपना, आप कहते हैं ठीक है हमारे बच्चों के ऊपर नहीं चलती, हमारे रिश्तेदारों पे नहीं चलती, ठीक है नहीं आप जो बन गए वो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन इस मामले में तो हमारे पास चॉइस है, फिर क्यों हम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें जिनका फखर ये होता है कि हमें दीन का कुछ नहीं पता है। एक हमारे प्रोफेसर होते थे वो इतने पीएचडी थे, लेकिन जब कोई दीन की बात अगर क्लास में हो जाती थी ना तो वो आगे से कहते थे कि इस्लाम इस्लाम की बातें मुझे नहीं पता, यानी ये भी उन लोगों के लिए बड़ा फखर की बात होती है कि जो है ना मुझे तो नहीं इस्लाम का कुछ पता, नहीं दुनिया का सारा इल्म पता है लेकिन इस्लाम का नहीं पता, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी खुशी की भी बात है कि उनके लिए कि बिल्कुल नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा आए मस्जिद में तो गरीब मुहाजिर बैठे हुए थे जिन जो उनके पास इतने कपड़े भी नहीं थे कि एक दूसरे का सतर एक दूसरे का सतर ढांपने के लिए ना वो एक दूसरे के पीछे बैठे हुए थे, तो इनमें से एक कुरान पढ़ रहा था, तो आपसे सलम तशरीफ लाए, आपने आके पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा ये हमें कुरान सुना रहा है, तो आपसे सलम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग रखे जिनके साथ मुझे बैठने का हुक्म दिया, फिर आपसे सलम उनके दरमियान बैठ गए और उनको फरमाया कि आप हलका बना लो यानी एक सर्कल बना लो, और इस तरह से उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजारा और फरमाया कि तुम अगनिया मालदारों से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और ये 500 साल है इतना पहले तुम जन्नत में चले जाओगे, उनका दिल भी खुश कर दिया। तो इसलिए इस चीज को अगर आप चाहते हैं ना कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए तो अपनी कंपनीज का जरूर जायजा ले, और कभी माल दौलत फैशन स्टेटस इस बुनियाद पे दोस्तियां ना बनाइए। वकुलिल हक मेर रब्बिकुम, और कह दीजिए कि हक मेरे रब की तरफ से है, तुम्हारे रब की तरफ से, सॉरी तुम्हारे रब की तरफ से है। यानी ये बातें भी हक हैं, ये जो सारी बातें की गई हैं, जो असहाबे कहफ का किस्सा था वो भी हक है, वो भी ट्रूथ है। अब रब्बिकुम क्यों कहा गया, तुम्हारे रब की तरफ से, ये भी कहा जा सकता था मेरे रब की तरफ से, मेरे रब्बी, ताकि जो सुनने वाला ना उसको रियलाइज कराया जाए कि ये तुम्हारे रब ने ही ये बताया है, ये तुम्हारे रब का कलाम है, ये उसने ये सारी बातें बताई हैं और उसने हक बताया। ये जो लोग कह रहे हैं यहूदी कुछ कहते थे, वो ईसाई कुछ कहते थे, इनकी बातें हक नहीं है, अल्लाह की बात हक है। अब ये तुम्हें बातें तो बता दी गई हैं, असहाबे काफ का भी पूछा था वो भी बता दिया गया, वमन शाफल क्यों मैं वमन शाफल यकुर, अब जो तुम में से चाहे मान ले, जो चाहे ना मान ले। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भी मानोगे तो कोई इट्स ओके, ये नहीं मतलब है, मतलब अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बादशाहत में कोई फर्क नहीं आएगा। वो है भी ना हदीस कुदसी के तुम में सब जिन इंस सब अव्वल आखिर सब मर्द औरतें सब के दिल सबसे ज्यादा बेहतरीन के दिल की तरह हो जाए, यानी सबके दिल जैसे बेहतरीन बेस्ट तो कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की तरह हो जाए, तो अल्लाह ताला की बादशाहत में एक जर्रे बराबर भी नहीं फर्क आता। और सबके दिल सबसे बुरे की तरह के हो जाए, बलीस की तरह के, अल्लाह माफ करे सबके दिल हो जाए, तब भी अल्लाह ताला की बादशाहत में तो कोई फर्क नहीं आता। अपने ईमान का इतनी धाक जमाने की और एहसान जताने की जरूरत नहीं है, हम किसी पे एहसान नहीं करते, अपना भला करते हैं। इन्ना अतदना लिज़्ज़ालिमीना नारन अहाता बिहिम सुरादिकुहा, जो नहीं फिर मानेगा, तुम्हारी चॉइस है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को रास्ते दोनों दिखा दिए, हक भी वाजे कर दिया, फिर अब नहीं मानना तो ये भी तुम्हारी चॉइस है, अगर मान जाओगे तो ये भी तुम्हारी चॉइस है। लेकिन ये याद रखना कि जो फिर नहीं मानेगा ना, तो ऐसे जालिम है, ये लोग जालिम है, इन जालिमों के लिए हमने तैयार कर रखा है, आतदना तैयार हो चुका है, ये नहीं कि अभी करना है। बाज लोग कहते हैं अभी जन्नत जहन्नुम नहीं है, अभी वो तो कयामत के दिन अल्लाह बनाएगा, ये कुरान के अंदर है आतदना, माजी का जीका है, हमने तैयार किया हुआ है, तैयार कर ही भी है। कि कैसी आग, अहा तभी सुरादिकुहा, घेर लेंगी उसकी कनाते, उसकी टेंट, उसका जो जैसे आप कहेंगे सराउंडिंग, उसकी जो उसकी उसकी वॉल्स जो हैं वो उसको घेर लेंगी, ऐसी आग होगी, यानी आग की दीवारें होंगी उसके इर्द-गिर्द। बाज ने कहा कि सुरादे के गर्दन है कि जो जहन्नवियों को घेर लेगी कयामत के दिन, और वो चकलेगी उनको। बाज ने कहा धुआं है, लेकिन जो यहां से ज्यादा पता चलता है वो आग है, जो आग की दीवारें। और सोचें जब आग की दीवारें हों तो इंसान का एस्केप कहाँ से हो सकता है, वो कहाँ से निकले, कहाँ से भागे, उसके इर्द गिर्द कोई सीमेंट की दीवारें नहीं है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अस्तगफिरुल्लाह। वही यस्तगीसु युगाथु बिमा इनकल मुहलि यश्फिल वुजूह, और जब इंसान किसी भी गर्मी के अंदर होता है, तपिश उसको लगती है, तो सबसे पहले उसको पानी की तलब होती है कि वो पानी मांगता है, मुझे पानी दे दो। जब वो वहां पे पानी की फरियादें करेंगे, चीखेंगे, तड़पेंगे पानी के लिए, तो उनको आम पानी नहीं दिया जाएगा, वो पानी दिया जाएगा कल मोहल। मोहल कहते हैं ऐसी, जैसे यहाँ पे भी बताया गया तेल की तिलछट, यानी वो जो तेल नीचे रह जाता है ना, वो डार्क भी होता है, वो बेकार भी होता है, थिक भी होता है, और वो वाली तेल की तिलछट उसको दी जाएगी जिसका टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा। और ऐसा, इससे मुराद वो ये भी बताया गया कि ऐसा पिघला हुआ तांबा जो चेहरों को भून दे। और ये भी इसकी तफसीर में आता है कि जो पीप है, पस जो होती है वो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो चॉइस तो तुम्हारी है, लेकिन उसके बाद अंजाम देख लो कि अंजाम क्या है। ऐसा तेल की तिलछट जो यश विल वजू भून डाले चेहरों को, चेहरों, जब वो इंसान उसको अपने मुंह के करीब लेकर आएगा उस प्याले को, तो सारे उसकी अल्लाह ताला माफ फरमाए, उसकी स्किन, उसका गोश्त पोश्त, उसका सब पिघल के मेल्ट होके उस पानी में गिर जाएगा। फिर भी वो उसको पिएगा तो उसका सारा जिस्म जो है अंदर से जल जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। और ये कोई बदतरीन सजा नहीं, इससे भी बदतरीन सजा ये है कि उनका कभी खात्मा ही नहीं होना, मौत नहीं आनी कि फिर मारी जाए चलो इंसान, इतनी स्वेयर पनिशमेंट के बाद, ऐसी चीज के बाद जिसमें उसका यानी चेहरा क्या हालत रही, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि उस पानी का टेम्परेचर क्या होगा जो चेहरे को पिघला दे, उसका टेम्परेचर क्या होगा। अल्लाह ताला हमें माफ कर देना या रब, अल्लाह हमें कुफर से महफूज रखना, शिर्क से महफूज रखना, हर अपनी नाफरमानी से महफूज रखना। तो ये पानी क्या पानी होगा कि जो ऐसा है, जो इनके सरों पे भी डाला जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी। तो बेसशराब कितना बुरा पीने का की चीज है ये। आज यानी किसी को गर्मी लगे और उसको कोई गर्म पानी लाके नलके का पानी दे दे तो कहता है ये लेकर आयो, पीना नहीं पसंद करता उसका, उसको इसका मतलब यहां से पता चला कि सिर्फ वो उस पानी के करीब आने से उसका चेहरा जो भुन जाएगा वो इतना ही नहीं होगा, वो पिएगा भी। इसीलिए तो कहा गया बेशक शराब पिएगा, बिकॉज वो फोर्स्ड होगा पीने का ना, और कुछ नहीं है, वो कहेगा कुछ मुझे मिल जाए। साथ मुर्तफका, अल्लाह ताला माफ कर दे, कितनी बुरी रहने की जगह है, कितना बुरा ठिकाना है ये। अब ये जो लोग काफिर थे ना, वो मोमिनों को ऐसे देखते थे कि ये क्या चीज है और ये क्या, इनका तो कोई स्टेटस नहीं। तो बताया जा रहा है कि ऐसे अंजाम होगा उन लोगों का जो कुफर करने वाले हैं। तुम इनको हकीर समझते हो, देखो कि ऐसे लोगों का क्या अंजाम होगा जो खुद शिर्क करने वाले हैं। तो खुद अपनी खैर मनाओ। और इससे पता चलता है कि इंसान ऐसा नहीं कि बस रोबोट है और वो उसकी कोई चॉइस ही नहीं है और जबरदस्ती उसको जो तकदीर में लिख दिया गया अब उसने तो वही करना है। नहीं, इंसान के पास चॉइस है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। हाँ, मगर ये कि अल्लाह ताला का भी फैसला होता है। और हम जो अहले सुन्नत हैं, हम यही कहते हैं कि इंसान की भी चॉइस अल्लाह ताला ने इंसान को भी दी है और अल्लाह ताला भी फैसला करता है जो तकदीर में उसके लिए लिखा हुआ है पहले से। अल्लाह ताला जानता है इसने क्या फैसला करना। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और साले अमल किए। और अल्लाह ताला ने देखें कहीं पे भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि सिर्फ उनकी बात बता के और खत्म कर दी गई हो, बल्कि उन दूसरों की भी हमेशा बात बताई जाती है कि जो बुरा करेगा उसका अंजाम क्या है और जो ईमान लेकर आता है तो उसके साथ क्या होगा। जो ईमान लाए और साले अमल करे तो इन्ना ला नुदियो अजरा मन अहसना अमला, तो बेशक अल्लाह ताला जाया नहीं करता उन लोगों का अजर जो अच्छा अमल करने वाले हैं। इन्हें है तसल्ली रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे नेक अमाल को कभी जाया नहीं करेगा। कभी कभी शैतान इंसान के जहन में डाल देता है ना कि पता नहीं इसका कुछ मिलना भी है कि नहीं, मैं ख्वामखा इतनी कुर्बानी देती जा रही हूँ, मैं खामखा रात को उठती हूँ, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं सोई भी रहूँ। नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि छोटा सा भी जो अमल है ना, आप जरा सा सदका करें, जरा सा आप किसी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दे, कोई छोटे से भी इबादत का काम करें, आप कभी ये ना सोचें कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक-एक जर्रे को भी महफूज रखना। अल्लाह ताला एक-एक जर्रे को भी उस दिन तोलेगा, तो जब एक जर्रे ने भी तुल जाना है, अल्लाह ने जाया कोई नहीं करना, तो उसकी भी वैल्यू होगी। तो साले हाथ में सारी किस्म की नेकियां आ जाती हैं, जिस नेकी का भी मौका मिल जाए अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा उस अमल को जो आसन है। आसन अमल क्या है? आसन अमल यानी वो अमल जो परफेक्शन के तरीके से किया गया, बेस्ट तरीके से किया गया, तो सिर्फ इसका मतलब साले अमल काफी नहीं है, बेस्ट तरीके से करना भी काफी है। मतलब क्या कि जैसे नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना एक अमले साले है, नेकी का काम है, मगर आसन अमल क्या है कि उस नमाज को भी आप अच्छे तरीके के साथ संवार के पढ़ें। कुरान पढ़ना है, नेक अमल है, लेकिन उस कुरान को भी जब समझ समझ के ठहर ठहर के गौर फिक्र करके पढ़ेंगे तो वो आसन अमल बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि सिर्फ नेक अमल नहीं, आसन अमल करने के लिए आगे आप बढ़ें, आप उसको करने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला ने देखिए कितनी श्योरिटी दी है ना, यहाँ पे अश्योरेंस कराई है, इन्ना इन्ना से स्टार्ट किया, इन्न लदीना बेशक, ये श्योरिटी, फिर इन्ना बेशक हम, ठीक है, तो बिल्कुल फिकर की इसमें किसी को जरूरत नहीं है। कि शैतान असल में ना क्या करता है, उस नेकी को ना छोटा हल्का इतना कर देता है कि इंसान कहता है कि क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है, वो इतना उसको माइन्यूट दिखाता है। तो जब इंसान उसको इतना बेकार सी छोटी सी चीज समझेगा तो फिर क्यों करेगा, तो अल्लाह जाया नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। उलाय कलाम जन्ना तो आदम, उलाय का जो है ना ये भी ताकीद है और लहूम भी ताकीद है। कितनी ही ताकीदें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि ऐसे ही लोग हैं जो साले अमल करते हैं, ब्यूटीफुली करते हैं उसको, क्योंकि आसन अमल का अजर भी इसके कितनी गुना बढ़ जाता है जब आप आसन अमल करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए जन्नत आदन है। आदन कौन सी होती है? हमेश की जन्नत, इटर्निटी, और ये एक जन्नत का नाम भी है। अल्लाह ताला ने उसकी सेटिंग बताई है कि तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे से नहरें बहेंगी। तो तहत का माना मुफसरी ने ये भी किया कि मतलब है कि घरों के साथ साथ या रास्तों के साथ साथ उनके दरमियान में बहेंगी, क्योंकि ये नहरें गड़ों में नहीं है जैसे दुनिया की नहरें होती हैं कि गड़ा बना के उसके अंदर नहर, इस तरह से नहीं, ये जमीन के ऊपर चल रही होंगी। और मोमिन जहां चाहेगा उनको हुक्म देगा तो उधर वो टर्न कर जाएंगी। और कौन कौन सी नहरें हैं? चार किस्म की नहरें हैं जन्नत के अंदर, पानी की, दूध की, शहद की, शराब की। सुभान अल्लाह। युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, वो पहनाए जाएंगे उनमें कंगनों में से, यानी और भी जेवर होंगे लेकिन कंगनों में से, या फिर ये भी मतलब है कि मिन ज़हबिन सोने से, और भी जगह पे आता है चांदी के भी होंगे, मोती और सोने के भी होंगे, यानी जुड़ाव जिनको कहते हैं। तो मिन तमहिजिया, यानी इनमें से बाज ऐसे होंगे, एक तरह की ज्वेलरी की बात की कि सोने के कंगन होंगे और वो पहनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे दुनिया के अंदर लड़की को दुल्हन बनाया जाता है, वो खुद थोड़ी सजती है, कोई उसको मेकअप करता है, कोई जेवर पहनाता है, कोई खादमाएं होती हैं या जो भी ब्यूटिशियन या, लेकिन वहां पे खादमाएं होंगी जो उनको जेवर से सजाएंगी, ताज पहनाए जाएंगे, कंगन पहनाए जाएंगे, हार पहनाए जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या और तरह के जेवर होंगे, और मर्दों को भी और औरतों को भी, क्योंकि पहले जमाने के अंदर बादशाह कंगन पहना करते थे। अल्लाह अकबर। तो उनकी तो जिंदगी वहां पे बादशाहों की तरह होगी ना, तो वो उनको पहनाए जाएंगे। और फिर वयलबा सुवन्ना सिया बन खुदर मिन सुंदुसिम व इस्तबरक, और पहनेंगे वो लिबास, अब ये नहीं कहा गया पहनाए जाएंगे, पहनेंगे वो लिबास सब्ज ग्रीन कलर के लिबास होंगे। तो क्या सिर्फ ग्रीन कलर के ही होंगे और कोई कलर नहीं होगा? नहीं, और भी कलर्स होंगे, लेकिन ग्रीन को एक हाईलाइट किया गया यहाँ पे। वो ग्रीन होंगे मिन सुंदुसिम व इस्तबरक, बारीक रेशम के और भारी, मैं मोटा नहीं कहूंगी इसलिए कि मोटे रेशम को बाज दफा हम समझते हैं कि पता नहीं, मोटे कपड़े को हम जरा इतना फाइन नहीं समझते ना, लेकिन इस्तबरक वो है जिसको हम कहते हैं ना भारी, भारी काम वाला कपड़ा होता है, राइट? तो हम तो अच्छी तरह इसको समझते हैं कि जब काम किसी कपड़े पर की कर दिया जाता है, बहुत हैवी हो जाता है वो, ठीक है, तो वो हैवी वाले भी होंगे और लाइट वाले भी होंगे, दोनों तरह के होंगे। बाज ने कहा कि इस्तबरक ऊपर पहनने का होगा, जैसे आप ऊपर कोई चीज डालते हैं, और जो नीचे का जो जिस्म के साथ है वो सुंदुस होगा, वो बारीक होगा, तो फाइन सिल्क होगी, जो पहनने के कपड़े होंगे वो फाइन सिल्क के होंगे। देखें आप, मर्दों के लिए दुनिया के अंदर सिल्क भी हराम है और सोना भी हराम है। कभी भी किसी मर्द को सोने की रिंग ना दें, क्योंकि आप उसको एक तरह से वो चीज गिफ्ट दे रहे हैं जो उसके लिए हराम है। ठीक है, तो शादियों पे इस पे कभी लोग दे देते हैं, तो कभी भी सोने की ना दे। उसके लिए सोना दुनिया में हराम है, और जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जिन्होंने दुनिया के अंदर इससे परहेज किया, अल्लाह ताला जन्नत में उनको सोने के कंगन पहनाएगा और सोने के जेवरात। इसी तरह आपको पता है कि सिल्क भी मर्द के लिए हराम है, तो जो प्योर सिल्क होती है तो वो भी दुनिया के अंदर हराम है, और वहां पे जाके अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पहनाएगा। इसी तरह शराब यहाँ पे हराम है लेकिन वहां पे शराब है। तो शायद हम ये सोचते हैं ना कि हमारे लिए कोई इतनी बड़ी इतनी अट्रैक्टिव चीज ना हो मर्दों के लिए आज के दौर में कि कंगन है, या लेकिन उस जमाने के उससे देखें तो ये बहुत बड़े सजने संवरने की। उस जमाने में तो बादशाह पहना करते थे, कैसर रोम और किसरा के कंगनों की बात बहुत आती है, हदीस में भी पता चलती है। तो मतलब वो एक बहुत ऑनर और एक बहुत बड़ी रॉयल्टी की बात समझी जाती थी। और कपड़ों से भी पहले ज्वेलरी की बात आई, हालांकि इंसान कपड़े पहले पहनता है और ज्वेलरी बाद में पहनता है। ये इसकी वजह ये है कि देखिए ज्वेलरी जो है ना वो सबसे कीमती होती है। कपड़ा कभी भी आप लॉकर में नहीं रखते, ज्वेलरी लॉकरों में रखी जाती है, इतनी कीमती। तो कीमती चीज की पहले बात की गई, तो इतने खूबसूरत कपड़े उनको पहनाए जाएंगे और ऐसे प्यारे जेवर, मुत्तकीन फीहा अलाराइक। अब सज धज तो गए, अब सजने के बाद क्या करें, फिर अपने तख्तों के ऊपर बैठे होंगे, तकिए लगाए हुए, नेमत सवाब व हसुनत मुर्तफका। वहां पे कहा था बेस शराब व सात मुर्तफका, यहाँ पे उसका ऑपोजिट है। कितना अच्छा बदला है जो अल्लाह ताला उनको देगा, और कितनी अच्छी रहने की जगह है वो, सुभान अल्लाह। और जरा सोचें वो औरतें जो कुरान पढ़ने से पहले देखें आईब्रोज बनाती थी, बाल खोल के जाती थी, ज्वेलरीज अपनी बेपर्दा आदमियों को सामने भी डिस्प्ले करती थी शादियों पे, इस पे फंक्शंस पे। और फिर कुरान पढ़ने के बाद जब हिदायत मिल गई तो अब अबाया स्काफ ये सब चीजें वो पुरानी छोड़ दी। तो अब यहां से आप देखें कि अल्लाह ताला कितना कदरदान है। आप अगर दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्मों पर आ जाते हैं और कोई भी कुर्बानी देते हैं तो कोई आपकी चीज जाया नहीं जाएगी। जो औरतें इतनी कुर्बानी ऐसी देती हैं, ये नहीं कि उनके पास ज्वेलरी नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं पहनने को, या उनके बाल कोई खूबसूरत नहीं, वो भी एक से बढ़ के एक है, मगर सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, उसके हुक्मों के ऊपर चलने की खातिर अगर कोई इंसान कुर्बानी देता है तो उसका अजर बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारी कुर्बानियों और तुम्हारी ये जो भी तुम काम करोगे इसको कभी जाया नहीं करूंगा, कभी ना सोचेंगे कुछ से क्या फर्क पड़ता है। वहां पे इससे भी बेहतरीन लिबास है, इससे भी बेहतरीन जेवरात हैं जो मिलेंगे, थोड़ी सी बस सब्र की जरूरत है। ताशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती ना, जबकि बाज लोग औरतों को बेपर्द देखा था तो फरमाया तुम दुनिया में मजे कर लो और हम हमारे मजे आखरत में, तो कभी बददिल ना हो। तो ये सोचें, जहन में लाएं कि देखें अराइक क्या है, तख्त है ऐसे, वो जो मैंने आपको जैसे बताया जैसे बेड होते हैं उनके ऊपर कैनोपीज लगी होती हैं जिसके ऊपर से पर्दे लटक रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, तो कितनी जबरदस्त जगह जहां पर कोई गम ना होगा, कोई परेशानी ना होगी, कितनी अच्छी रहने की जगह, जहां पे कंपनी किसकी होगी, सहाबा कराम की, सहाबियात की, हजरत खदीजा, हजरत मरियम, हजरत आयशा, हफ्जा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, कितने लोग होंगे, कंपनी भी प्यारे लोगों की, जगह भी खूबसूरत, आराम ही आराम। बाज लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं लोग क्या जन्नत ऐश करने की जगह है, अय्याशी की जगह है, और उसको बुरा रंग देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ना, उसको पता है कि ये इंसान की ख्वाहिश है। अल्लाह ताला चाहता तो ये भी कह देता, अगर आपको इतना ही एतराज होता है ना जन्नत में जाना, जिन लोगों को इसका बड़ा एतराज है ना तो उनको कह दिया जाए कि भाई यहाँ पे तो कुर्बानियां दो अल्लाह के हुक्मों पे चले। अल्लाह ताला ये कह सकता था कि हाँ तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें मैंने पैदा किया, तुम्हारे ऊपर हक है मेरा, तो मैंने पैदा किया तो मेरा हुक्म मानो, और उसके बाद कोई रिवॉर्ड की बात नहीं है, जाहिर है मैंने पैदा किया, अब इसके ज्यादा क्या भाई तुम्हारे लिए रिवॉर्ड हो सकता है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बावजूद भी इंसानों कितना नवाजा। लिहाजा इस चीजों की ना, जो लोग इसको बिलिटल करते हैं, हकीर करते हैं, हूरों की बातों की मजाक उड़ाएंगे, नहरों का मजाक उड़ाएंगे और ऐसी बातें करते हैं, तो अल्लाह ताला ने तो इंसान की जो एस्थेटिक सेंस है उसके मुताबिक, और नॉट ओनली कि ये नेमतें रखी हैं, इससे भी बढ़ के ऐश और आराम, और इससे भी बढ़ के नेमत तो अल्लाह का दीदार है, उसका कुर्ब पाना है, और इससे भी अलावा क्या कुछ है। तो वो तो वाला दही ना मजीद, हमारे पास और भी है बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ इंसान को ये चीजें समझ आ सकती है ना। और इनकी हर एक बंदा ख्वाहिश करता है, मेरे पास अच्छा कार हो, मेरे पास अच्छा पहनने को, मेरे पास फरागत हो, मैं इंजॉय कर सकूं चीजों को। क्यों जाते हैं लोग वेकेशन में? तो सारी चीजें ये बेकार है क्या? तो अल्लाह ताला ने उसी की बेस्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म वहां पे दे दी। अल्लाह हू अकबर।